हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 24। अपने समस्त परेशानियों को, समस्त सोचों को, समस्त व्यावहारिक जो हमारी बातें जहन में आ रही हैं उनको साइड में रखेंगे, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अडॉप्ट कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहकणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिः प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 24। भगवान कह रहे हैं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणै सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। बहुत ही सुंदर श्लोक है, यह निर्णयात्मक श्लोक है। यानी कि अब पहले हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, जैसे जब हम लोगों ने टेक्स्ट नंबर 18 तक कर लिया था, फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किस किस को समझ में आया। वो क्यों मैंने पूछा था, तक क्योंकि 19 में ऐसा लिखा हुआ था मद भक्त एतद् विज्ञान, कि भगवान ने कहा था कि ये सिर्फ मेरे भक्त ही इसको जान सकते थे। इस क्योंकि भगवान ने एक टॉपिक खत्म किया ना, और उसके बाद एक निर्णय दिया कि भाई मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, और उसी के बाद 20 से एक दूसरा टॉपिक शुरू हुआ प्रकृति पुरुष इन दोनों के विषय में। तो आज वो 20, 21 और 22, 23 तक जो भगवान ने बताया है उसका एक निर्णय भगवान ने दिया है कि जो ये मुझे कल भी ये सवाल पूछना था कि किस किस को समझ में आया है, तो लेकिन फिर भी पहली दफा भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुई थी तो इसलिए मैंने पूछा नहीं। बहरहाल यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि भगवान क्या कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर भगवान इन तीन श्लोकों जो हम लोगों ने 20 से लेकर 23 श्लोक तक हमने जो समझा है और जो समझ सकता है उस व्यक्ति के विषय में बोलते हैं कि उसका क्या होगा। देखो ये थोड़े हार्ड टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये हार्ड टॉपिक्स ज्ञान का क्या मतलब होता है, आप संसार में भी कोई ज्ञान हासिल करने जाते हो तो हार तो होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि हार कोई बस प्लेट में डाल के दे दिया खा लो, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, और जैसे मुश्किल चीजें जो जो ज्यादा हार्ड होती हैं उसको करने से ज्यादा लाभ मिलता है। और रियल लाभ क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये सब पढ़ने से आपको क्या फायदा हासिल होगा, वो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अनुवाद बहुत अच्छा है। यहाँ भगवान कहते हैं यह एवं, यह मतलब जो, एवं मतलब इस प्रकार। अब इस प्रकार तो किस प्रकार, मतलब भगवान किस प्रकार की बात कर रहे हैं, इस प्रकार जैसे प्रकार भगवान ने श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 में जो प्रकार बताए हैं, क्या क्या बताया है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रकृति और पुरुष के विषय में जो कुछ भी बताया है, आगे भगवान कहते हैं यह एवं वेत्ति। वेत्ति का मतलब होता है जान लेता है, जिस प्रकार मैंने बताया है उस प्रकार जो जान लेता है, किसके बारे में, पुरुषम यानी जीव को। अब दो पुरुष हमने पढ़े ना, एक तो पुरुष वो जो फंसता है, एक वो पुरुष जो कि नियंता है या भोगता है। तो पुरुषम प्रकृतिम, और प्रकृति के विषय में हमने पढ़ा कि प्रकृति क्या है, च गुणाए, और फिर गुण का क्या मतलब होता है, जो प्रकृति के गुण होते हैं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, उसके विषय में। स सर्वथा, सर्व सह, सह का मतलब होता है उसके साथ साथ, किसके साथ साथ, यानी प्रकृति जीव और गुणों के साथ साथ। सर्वथा का मतलब होता है सभी प्रकार से वर्तमान। अब इसका मतलब है सर्वथा वर्तमान का मतलब होता है जिस भी तरीके से वो स्थित है संसार में, चाहे वो जिस भी कंडीशन में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो शूद्र हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो ब्रह्मचर्य हो, जो भी अवस्था में वो है, अगर वो इन सबको, वेत्ति का मतलब जो थर्ड वर्ड लिखा हुआ है ना, वेत्ति, वेत्ति का मतलब होता है जो जान लेता है, किसको, पुरुष प्रकृति और गुणों को जान लेता है। सर्वथा वो जिस भी वर्तमान, इस वर्तमान स्थिति में वो जैसा भी है, प्रेजेंट में उसकी जो भी कंडीशन है, वर्तमानोपि न स, न का मतलब होता है कभी नहीं, स का मतलब होता है वो कौन, जो जान लेता है, व्यक्ति जो जान लेता है वो इस, किसको जान लेता है, प्रकृति पुरुष और गुणों को जान लेता है, वो इस वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जिस भी कंडीशन में है, कभी नहीं, कभी नहीं क्या नहीं, भूयो भी जायते, भूयो मतलब भूय इस संसार को भी बोलते हैं, भूय मतलब भूमि बोलते हैं ना जिस तरह, और यहाँ पर लिखा हुआ फिर से दोबारा से संसार में, अभी जायते, जायते का मतलब होता है जन्म नहीं लेता। बहुत ही सुंदर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति पुरुष तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है, मतलब डेफिनेटली उसको मुक्ति मिलेगी, जिसको ये बात, जो ये संबंधित इस विचारधारा को खाली समझने की बात की है, जिसको ये समझ में आ जाता है उसको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बहुत ही, यानी कि देखो लाभ क्या है, मैं आपको बताऊं, जो ज्ञान हासिल करते हैं ना, उससे जो रिजल्ट मिलता है ना, कौन सा ज्ञान हासिल करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब संसार में भी तो हम लोग इतने कई वर्षों से, जब से पैदा हुए हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहे, कुछ ना कुछ, बहुत बच्चे को चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, उसके बाद स्टडी, उसके बाद क्या, कभी कोई डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर, कभी वकालत करता है, कभी सीए करता है, कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, सीखता रहता, वो जो कुछ सीखा, कचरा जो किया सारी जिंदगी अपनी लाइफ का, वो क्या, इस भौतिक धरातल तक ही लिमिटेड है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते ये तरक्की नहीं है, तरक्की का मतलब होता है आध्यात्मिक उन्नति। ये देखो ज्ञान क्यों, जिसने जो जो भी सीखा वो क्यों सीखा है, ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर सके, या फिर अपने जो ये संसार के जो कष्ट है ना, उनको खत्म कर सके। जाहिर सी बात है, वो अर्निंग ज्यादा होगी तो फिर भौतिक सुविधाएं वो ज्यादा हासिल करना चाहेगा, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, या फिर प्रॉब्लम जो है ना लाइफ की खत्म हो। लेकिन अक्लमंदी तो क्या है, वास्तविक ज्ञान तो क्या है, कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं, कभी आप ऐसी जगह पे जाना ही नहीं पड़े जहां पर दुखालयम अशाश्वतम लाइफ हो। तो ये रियल ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह को प्राप्त करो जहां पर आपको कोई दुख प्राप्त दुख ना मिले, कभी कोई कष्ट ना मिले, कभी कोई तकलीफ ना मिले। तो भगवान कहते हैं वो जो सांसारिक ज्ञान है उससे तुम्हें संसार में थोड़ी सुविधाएं तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया अभी आपको, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति चगुणाय सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। ये जो जान लेगा वो चाहे किसी भी स्थिति में हो वो वापस इस संसार में, इस दुखारयम संसार में वापस कभी नहीं पैदा होगा। श्रील प्रभुपाद जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति परमात्मा आत्मा तथा उनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्ति मुक्त होने का अधिकारी होता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि देखो, आपको मुक्ति तब मिलती है, मुक्ति के अधिकारी आप कब बनते हो, जब आप परमात्मा आत्मा तथा उनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाती है। अब ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन इस श्लोक की मांग है कि हम प्रकृति आत्मा परमात्मा को एक दफा से वापस रिवाइज करें। इस तात्पर्य में पहले देखो श्री प्रभुपाद ने क्या लिखा है, प्रकृति परमात्मा आत्मा तथा उनके अंतः संबंध, इन चार चीजों को जानने से आपको क्या होगा, आप अधिकारी बन जाएंगे। तो इन चार चीजों को श्री प्रभुपाद जी इससे पहले बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं अगर आपको समझ में आ गया तो आप अधिकारी। तो इस चीज को हम आप इसे रिपीट करेंगे, जो श्लोक नंबर 20 है ना, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, ये वाला श्लोक आप निकालो और इसका सेकेंड पेरा, जो सेकेंड है ना प्रकृति तथा जीव, उसमें अगर हम देखेंगे तो श्री प्रभुपाद ने उसमें इन सब की बहुत अच्छी व्याख्या की है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, प्रकृति परमात्मा तथा आत्मा। अब पहले प्रकृति और आत्मा के विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये दोनों नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वह सृष्टि से पहले ही विद्यमान थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि बनाई फिर कोई है ना संसार में कुछ हुआ, ऐसा एक बना दिया उसके बाद एक दूसरी चीज बनाई फिर दूसरी चीज। ये प्रकृति सारी की सारी और सारे के सारे जो जीव आत्मा संसार में है वो पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति है। भौतिक अभिव्यक्ति मतलब ये संसार जो है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो भगवान की शक्ति है, कौन सी, बहिरंग। और उसी प्रकार जीव भी है। अब जीव भी भगवान की शक्ति और भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। क्यों, जीव श्रेष्ठ शक्ति है, वो कार्य कर सकती है, उसके अंदर सोचने की सलाहियत है और भगवान का अंश है वो, तो फिर वो ज्यादा श्रेष्ठ है। दो शक्तियां होती है ना भगवान की, एक पराशक्ति होती है एक अपराशक्ति होती है। अपराशक्ति में क्या होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो होते हैं ना तत्व, वो भगवान की अपराशक्ति होती है। और पराशक्ति जीव भूता महाभाव, भगवान श्री कृष्ण 7.5 में बताते हैं कि ये जो जीव है वो मेरी पराशक्ति है, यानी कि वो बहुत हाईएस्ट टाइप की शक्ति है। अब जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है, ये बात समझ लेनी है। क्यों विद्यमान है ये क्वेश्चन नहीं है, बस विद्यमान है भगवान की मर्जी। तो जीव और प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले ही विद्यमान है। प्रकृति अब क्या होता है, पहले से विद्यमान है, लेकिन जब प्रलय होती है तो प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई। महाविष्णु जब जिसके जो जो कर्म बाकी रहे, प्रकृति में जो कुछ भी, जो योनियां थी, जो कुछ भी था, वृक्ष इत्यादि जो भी था, वो सब क्या हो गया, महाविष्णु के अंदर लीन हो गए। और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महातत्व के द्वारा प्रकट हो गई, और जब भगवान का वापस से भगवान को आवश्यकता हुई संसार निर्माण की तो महातत्व के द्वारा। महातत्व क्या है, 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक त्वचा रसना, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर जिह्वा उत्सर्जन तथा विसर्जन की दो इंद्रियों, पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय रूप रस स्वाद गंध स्पर्श, कितने हुए 20, और तीन मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद गुण कौन से जो भौतिक गुण है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये है महत्तत्व। इसमें टोटल 24 चीजें हैं और इस महत्तत्व के जरिए भगवान ने इन 24 चीजों को मिलाकर ये सब संसार में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो बना। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, किसके भीतर, इस प्रकृति के भीतर ही रहते हैं। अब भगवान ने प्रकृति बनाई ना महातत्व से और जीव को भी उसके अंदर स्थित कर दिया, किसी को गधे के अंदर, किसी को कुत्ते के अंदर, किसी को जिस जिसके जैसे जैसे कर्म थे। और चूंकि वे बद्ध है, अब बेचारा बद्ध है क्योंकि कैद कर दिया उसके अंदर शरीर के अंदर, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। और जब कैद हो गया है उसका प्रकृति से संबंध हो गया, इसको हमने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि जब वो प्रकृति के साथ संबंध कर देता, हालांकि जीव प्रकृति इन दोनों की नेचर बिल्कुल बिल्कुल अलग है, जीव पराशक्ति है, प्रकृति अपराशक्ति है। जीव तो ना अनादिकाल से जो है वो भगवान का स्वांश है, मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, वो कभी भी आपस में उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, उनमें कोई भी संगति नहीं हो सकती, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। लेकिन जीव क्या करता है, अपनी नालायकी प्रकृति के साथ अपना प्रेम बढ़ा देता है और प्रकृति के जो गुण होते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वो इसके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो भूल जाता है कि मेरा रियल संबंध कृष्ण के साथ है। और इसी विस्मृति की वजह से, इस भूल जाने की वजह से उसे बारंबार संसार में आना पड़ता है। और श्री प्रभुपाद ने आज बहुत भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह एवं वेत्ति पुरुषम, और जब जिसको जो पुरुष ये जान लेता है प्रकृति गुण ये सब जान लेता है और वो भले जैसा भी हो क्योंकि अब उसको अपना संबंध याद आ गया है, फिर तो वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यानी कि ये संबंध खाली याद करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हासिल करने की अभिव्यक्ति, ज्ञान हासिल करने की वजह है। अतएव परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हो जाता है, इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं होने दिया जाता। यानी कि अब क्योंकि भगवान को भूल जाता है तो वैकुंठ में जाने नहीं दिया जाता, और वापस से याद कर लो तो जाने दिया जाएगा। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। पहले तो जब महाविष्णु के अंदर होते तब भी भूल जाते हैं और संसार में आते तो भी भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति में जब वो आते हैं तो उन्हें बार बार अवसर दिया जाता है। किसके जरिए, गुरु साधु और शास्त्र के जरिए उनको ये बार बार बताया जाता है, या फिर उसको जन्म ऐसा दिया गया है कि वो शुभ कर्म करें और ऊपर उठें, अपनी उस स्टेज को प्राप्त कर लें जिससे वो समझ जाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवसर दिया जाता है, ये एक आपको एक चांस मिला है कि आप उस अपने वास्तविकता को, अपने रियलिटी को जान लो और भगवान को प्राप्त कर लो। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। भगवान ये बारंबार सृष्टि क्यों, पहले भगवान ने बना दी होगी, किसी के भी अपराध नहीं होंगे तभी भी बना दी होगी, लेकिन आके जब उन्होंने काले करतूत किए होंगे फिर तो उनकी सजा देनी पड़ेगी, फिर भगवान बार बार बना रहे हैं। इसे बोलते हैं एक गलती के लिए बार बार गलतियां करो, तो भगवान ने पहले तो ऐसे गेम के लिए बनाया होगा। अभी यहाँ पर बताएंगे कि उसका कोई महत्व नहीं है कि पहले क्यों बनाए, लेकिन जब अभी हम हमारे गुनाह जमा हो गए, हमारे अपराध जमा हो गए, तो उनको खत्म करने के लिए तो दोबारा बनाना पड़ेगा ना संसार को। तो प्रकृति को बार बार बनाने का रहस्य क्या है कि आपको बार बार ये चांस प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपनी वास्तविकता को जान लो और वापस से अपने घर में आ जाओ। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोह स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। वास्तव में तो उसकी रियलिटी क्या है, भगवान का अंश है, तो अंश का काम क्या क्या होना चाहिए, पुण्य की सेवा करनी, लेकिन वो क्योंकि प्रकृति के साथ बद्ध हो जाता है इसलिए क्या होता है कि वो भगवान से विद्रोह करता है कि नहीं, प्रकृति का स्वभाव है क्या प्रभुत्व जताना, और उसके अंदर भी यह स्वभाव आ जाता है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका अविश्रम रूपा जी बता रहे हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है कि जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए हैं, कि कैसे आए हैं, उसका तो कोई महत्व नहीं है, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। भगवान को तो पता है, लेकिन महत्व किस चीज का है कि हम इस संसार से कैसे निकले, और यही चीज आज बता रहे हैं कि अगर आप प्रकृति पुरुष और है ना परमात्मा, उनके अंत संबंध, और कल हमने परमात्मा को तो इतना अच्छे तरीके से पढ़ा श्लोक नंबर 23 में कि सबको याद ही होगा कि वो क्या करते हैं परमात्मा के विषय में। उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमा मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता परमात्मा है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और उसका काम क्या है? उपदृष्टा, वो साक्षी है, वो फिल्म बना रहा है तुम्हारे काम की, और अनुमति भी देता है तुम्हें, हाँ बेटा करो फिर भुगतना, और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा उनके आपस में संबंध की स्पष्ट जानकारी जान लेने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। और मुक्त यहाँ पर एक वर्ड आया है, उसको भी मैं चाह रही थी यहाँ पर क्लियर करूं। देखो मुक्ति, शास्त्रों में मुक्ति कितने प्रकार की बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 सायुज्य मुक्ति, इसका मतलब होता है भगवान के अंदर तदात्मय हो जाना, यानी भगवान को निराकार समझते हैं जो लोग, निराकारवादी होते हैं वो भगवान को एक ज्योति समझते हैं, एक प्रकाशपुंज समझते हैं, और उनका लक्ष्य होता है उस ज्योति के अंदर तदात्मय हो जाना, उस ज्योति के अंदर खुद को लीन कर देना, ये होती है सायुज्य मुक्ति। दूसरे नंबर पे है सालोक्य, यानी कि जिस लोक में भगवान रहते हैं। कौन से भगवान? जिस भगवान के रूप की आप उपासना करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने 8.5 में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का वर्णन किया है, अंतकाले यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाव, कि जिस भाव को आप सोचते हो, जिधर जिधर जाने के बारे में सोचते हो मरने के टाइम पर, उस उधर ही जाओगे। तो यहाँ पर एक सालोक्य कि जिस भगवान के लोक के विषय में आप सोच रहे हो, भगवान अलग अलग नहीं होते लेकिन भगवान के रूप तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से? जैसे कच्छप, मत्स्य, वराह, वामन, नरसिंह, राम, बहुत सारे भगवान के रूप में। तो जिस रूप की आप उपासना करते हो उसके लोक में जाने वाले मुक्ति को बोला जाता है सालोक्य। तीसरे नंबर पे साष्टी, साष्टी का मतलब होता है भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। ऐश्वर्य क्या? भगवान के षडैश्वर्य हैं, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा धन दौलत वाला, सबसे ज्यादा त्यागी, सबसे ज्यादा शक्तिमान, सबसे ज्यादा वैरागी। तो ये भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, षडैश्वर्य वो प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं सारिष्टी। और नंबर 4 पर है सारूप्य, यानी कि जैसा भगवान का रूप है, जैसे जिस भगवान की आप उपासना कर रहे हो, यानी कि जिस भगवान के रूप, जिस रूप की आप उपासना करते हो, नरसिंह देव की कर रहे हो, श्री राम की कर रहे हो, या वामन देवता की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, भगवान के जिस रूप की, वैसा ही रूप आपको प्राप्त होगा। आगे है सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है मेरा सानिध्य प्राप्त करना, यानी भगवान का जो सानिध्य, भगवान की संगति, भगवान की फ्रेंडशिप प्राप्त करना, उधर जाके भगवान के करीब रहना, ठीक है, करीब रिश्तेदार बनना, या फिर सामीप्य, जिस जो जो भगवान की आप उपासना करते हो। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये मुक्तियां हैं ना, लेकिन यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति से भी बढ़कर बताई गई भक्ति को। तो ऐसा, और भागवतम में भी कहा गया, भागवतम में 1.4.67 इसमें वैकुंठ नाम, जो भगवान खुद है, भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं मुक्ति के विषय में, और मुक्ति, मेरे भक्त कौन सी मुक्ति चाहते हैं उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि को बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है कि ये सब आप प्राप्त करो और आनंद में रहो, लेकिन आनंद अगर आपको किधर जाने के बदले में इधर ही आ रहा है, तो फिर भक्त किधर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो बोला क्योंकि वो सदैव मेरी भक्ति में रहता है, संतुष्ट रहता है। मुक्ति का मतलब होता है संतुष्टि, बस एकदम रिलैक्स, आप एकदम कंफर्ट फील करो, तो जब भक्ति भक्त करता है उससे ज्यादा संतुष्टि, उसके ज्यादा आनंद, उसके ज्यादा इत्मीनान उसकी लाइफ में, और वो मुतमईन है अपनी भक्ति से। इसलिए वो 5 प्रकार की मुक्ति की अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करता, इसलिए ये सारी मुक्तियों को भक्त वक्त को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी चीज को श्रीमद् भागवतम में भी 11.20.34 में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि भक्ति का क्या मतलब है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई इच्छा रहती नहीं है तो मुक्ति भी तो अन्य अभिलाषिता हुई ना। अन्य का मतलब होता है कृष्ण की भक्ति से अतिरिक्त और कोई, तो मुक्ति भी हो तो भी वो अन्य हुई ना, तो भक्त को उसकी इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें चार प्रकार की आध्यात्मिक मुक्ति भी प्रदान की जाए, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि चार प्रकार की क्यों लिखा हुआ है, हालांकि आध्यात्मिक उत्थान या आध्यात्मिक मुक्ति तो पांच प्रकार की अभी हमने पढ़ी, तो इसके लिए बता रहे हैं कि मुक्ति का जो पांचवा प्रकार अर्थात भगवान में तदाकार होना, ये जो सायुज्य मुक्ति है जिसके जिसमें क्या होता है कि जो जीव होता है उसका अस्तित्व खो जाता है और वो भगवान के ज्योति में समा जाता है, तो उस तदाकार होना दिव्य लोक में ऐश्वर्य माना ही नहीं गया है, क्योंकि भक्त कभी ये नहीं चाहता कि मैं फना हो जाऊं और मेरी हैसियत ही ना रहे। भक्त क्या चाहेगा कि मैं हूं और तुम्हें प्रेम करने का आनंद हो, भले वो किसी भी तरीके से आनंद लेना चाहता हो, भगवान के साथ कोई भी अपना संगति करना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो अपना एक अस्तित्व खत्म करके कैसे आनंद। अब तुम खुद सोचो, जिससे तुम प्यार करते हो उसके अंदर तुम लीन हो जाओ तो तुम प्यार करोगे कैसे? तो भक्ति का मतलब ये होता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और प्रेम दो होंगे तभी होगा ना, अकेला अकेला कौन कैसे प्रेम करेगा। तो यदि उन्हें, यहाँ पर भगवान उद्धव से कहते, यदि उन्हें चार प्रकार की मुक्ति भी प्रदान की जाए तो वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती, कि फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भक्त को इस संसार की और कोई चीज चाहिए होगी, क्योंकि उसको तो भौतिक चीज भी नहीं चाहिए। तो भक्त को चाहिए क्या होता है? भक्त खाली ये चाहता है कि मुझे कुछ भी हो, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि। और भक्ति का क्या मतलब है इसको भी हम क्लियर कर दें। भक्ति का यहाँ पर हमें भागवत महापुराण में बताया जाता है कि भक्ति नौ प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें से जो मुख्य दो फर्स्ट एंड सेकंड जो चीजें हैं वही को इम्पोर्टेंस दी गई है, श्रवण करना और कीर्तन करना। भक्त की एक ही इच्छा होती है, भगवान श्री कृष्ण 10.9 में कहते हैं, मत चिता मत गता प्राण बोधयंतः परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त होते हैं उनका तो एक ही काम होता है, मेरे बारे में बोलते जाए और दूसरे भक्त सुनते जाए। ये श्रवण और कीर्तन, कभी उसको मौका देते कभी उसको मौका देते, बस आप सुनाओ मैं सुनता हूँ, वो बोलता आप सुनाओ मैं सुनता हूँ। और ये श्रवण और कीर्तन ही भक्त के जीवन, इसीलिए राजा पृथु बोलते थे कि अगर मैं वैंकुट में चला जाऊंगा और मुझे वो श्रवण करने का और भगवान के नाम का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा तो मुझे वो मुक्ति चाहिए ही नहीं, इससे बेहतर क्या है अगर आप मुझसे खुश हो गए हो तो मुझे हजारों कान करोड़ों जिह्वाएं दे दो ताकि मैं करोड़ों करोड़ों कानों से आपकी जो कथा अमृत का पान करता रहूं और जिह्वा से आपके नाम का कीर्तन करता रहूं। मुक्ति तो चाहिए ही नहीं भक्तों को, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया, देखो मुक्त दो तरीके से होते हैं, एक तो यहाँ से मर के चले जाओ, पहले मरना पड़ता है और गोलोक वृंदावन धाम में, लेकिन एक मुक्ति होती है कि आप जीते जी मुक्त हो जाओ, वो जीते जी भी मुक्ति का आनंद है, यानी कि भगवान की कथा श्रवण करने का, भगवान की भक्ति करने का, उसकी तुलना में बाकी सारी मुक्तियां नगरणीय है। तो यहाँ पर बताया कि अधिक मुक्ति का अधिकारी बन जाता है वो संसार में ही मुक्त है, उसको तो मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है, इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैंकुट वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है, यानी कि अब जब वो मरेगा, अब संसार में ही मुक्त है तो मर जाएगा तो वैंकुट में भगवान के पास तो चला ही जाएगा और वापिस से उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप संसार में जाओ। किसको? जो प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा उनके अंतर संबंध को स्पष्ट तरीके से जान लेता है। अब जो जान लेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो जो जान लेगा तो उसको फिर उसी तरह से इंद्रिय, इसे भगवान श्री कृष्ण बहुत चालाक है, पहले ही बता दिया कि जो जान लेगा उसको अपनी इंद्रियों को उसी तरीके से कार्य कराना पड़ेगा, यानी कि फिर पता चल जाएगा ना ये इंद्रियां तो मेरी नौकर है, मैं वास्तव में जीव आत्मा हूँ, तो मैं इंद्रियों की नौकरी क्यों करूं, उसको खिलाने पिलाने सुलाने और तैयार करने में क्यों सारा दिन परेशान रहूं, मैं स्वयं तो आत्मा हूँ, इंद्रियां मेरी गुलामी करेंगी और जो मैं बोलूंगा कि अब तुम कथा सुनो, अब तुम भगवान की सेवा करो, अब भगवान के लिए काम करो, भगवान के शास्त्र अध्ययन करो, भगवान के नाम का जप करो, तो इंद्रियों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जो जीव अभी मैंने हमने पढ़ा कि प्रकृति क्यों नहीं, भगवान ने आपको ये अवसर दिया, चांस दिया है कि इस शरीर में रहकर आप कैसे मेरे पास आते हो, तो ये तो समझो एक गाड़ी है। अब देखो गाड़ी का क्या मतलब होता है कि आप गाड़ी में बैठकर किसी मंजिल तक पहुंचो, जिस जिसके पास गाड़ी होगी उसको पता है कि गाड़ी का लक्ष्य क्या है, आपके पास अगर कन्वेंस है तो उसमें क्या आप बैठोगे और आपको कहां पर जाना है, जिधर भी जाना है उधर जाके पहुंचो, लेकिन आप गाड़ी को इतना महत्व देते हो, सुबह से लेकर रात तक उसको साफ करते रहो, बस से ना उसको पेट्रोल, कभी इसके अंदर एसी लगाओ, कभी इतना अच्छा उसको डेकोरेट करो, कभी कलर पेंट करो, कभी टायर चेंज करो, कभी क्या, लेकिन उस गाड़ी में कभी बैठ के आप जाओ नहीं, अपनी जगह पे पहुंचो नहीं, तो फिर वो गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा एक दिन आएगा कोई आपका बाप जिसने गाड़ी लेकर दी होगी ना, वो बोलेगा नालायक तुम इस गाड़ी के योग्य ही नहीं हो, वापस करो, मैं किसी और योग्य बेटे को दे देता हूँ। तो ऐसा ही होगा हमारे साथ भी, जब अगर हमें पता भी है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है और वो केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है, तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, और यहाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो वापिस हमें इस संसार में भेजने वापिस आना नहीं पड़ेगा। यही ज्ञान का फल है, यानी कि अगर आप ज्ञान हासिल करते हो तो उसका फल ये है कि आपको समस्त कलेशों से, समस्त दुखों से, समस्त तकलीफों से मुक्ति मिल जाए, और तभी मिल सकती है जब आप इस संसार से बाहर निकलो। इस संसार में दुख रहित जीवन की आशा करना बेवकूफी है। तो ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैवयोग से जीव इस संसार में आ गिरा है। अब ज्ञान क्या है कि मैं पता नहीं क्यों गिरा हूं, लेकिन गिर गया हूं, इस संसार में आ गया हूं, उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, प्रामाणिक मतलब जो परंपरा से आते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद, शिवभक्तिपाद और जो भी हमारे परम भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो जो शास्त्रों में प्रमाण दिए गए हैं उनके हिसाब से जो आपको बताते, ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में, साधु पुरुष होंगे, गुरु, साधु शास्त्र, उनकी संगति में निजी प्रयास द्वारा, यानी कि खाली उनकी संगति से सुनना नहीं है, आपको प्रयास भी करना है, आपको परिश्रम करना है, परिश्रम से आपको आशीर्वाद मिलता है, तो परिश्रम प्रयास के द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और अपने स्टेज पे आना है कि मैं क्या हूँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण या नित्यदास। जब वो भूल गए थे तो भटकना पड़ा था, अब याद आ जाए तो जाहिर सी बात है उसका भी रिजल्ट होना चाहिए कि वापस कभी भटकना ना पड़े। और तब जिस रूप में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता कही है, जिस रूप में कही है, कितना अच्छा है, कृष्ण प्रभुपाद जी बोल रहे एज इट इज, जैसा भगवान ने शब्द जो उच्चारण किए हैं, जो जो भगवान इसमें समझाना चाहते हैं, वो उस तरीके से जैसे भगवान ने कहा है उससे समझकर उसे समझना पड़ेगा पहले, तो फिर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण लोक को, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने शब्द कहे, क्या कहे हैं, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः, इस प्रकार, जैसे एवं वेति मैंने बताया, भगवान ने कहा इस प्रकार, जैसे जैसे हमने अभी पिछले वाला श्लोक पढ़े, तो भगवान ने कहा जो इस प्रकार से समझता है वो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है, तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। यह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। उसके लिए क्या, उसके लिए संसार में भी तो भक्त की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सारी टेंशन भगवान ले लेते हैं उसकी, और वो खाली भगवान की टेंशन करता है, और जब वो भगवान के पास जाता है तो फिर भगवान उसे बोलते हैं अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी जगह पे जाने नहीं दूंगा जहाँ पर तुम्हें दुख मिले, तुम्हें कष्ट मिले, अब मैं सदैव तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।